नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई उपलब्धियों के लिए देश के वैज्ञानिकों की सराहना की। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का 85वां सम्मेलन कल से पटना में शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। कटिहार में गंगा नदी में नौका दुर्घटना में 3 लोगों की डूबने से मौत, 7 लोग लापता। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में ठंड से राहत मिलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रखर वैज्ञानिकों और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है, जिससे भावी चुनौतियों के समाधान उपलब्ध होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की हाल की उपलब्धियों की सराहना की। श्री मोदी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्यरत बेंगलुरु के स्टार्टअप पिक्सल की प्रशंसा की।
एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है।
प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता के संबंध में कहा कि ये तकनीक अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है।
हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा 4था देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है।
श्री मोदी ने अंतरिक्ष में लोबिया के पौधे उगाने में वैज्ञानिकों को मिली सफलता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे अंतरिक्ष में सब्जी उगाना संभव होगा। प्रधानमंत्री ने आईआईटी मद्रास के एक्सटेम केंद्र की प्रशंसा की, जो अंतरिक्ष में निर्माण के लिए नई तकनीक पर काम कर रहा है। उन्होंने देशवासियों की ओर से वैज्ञानिकों, नवाचार से जुड़े लोगों और युवा उद्यमियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामना दी।
इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारा पवित्र संविधान दिया।
स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है।
कुछ दिन पहले ही स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे देश में जितने स्टार्टअप 9 साल में बने हैं, उनमें से आधे से ज्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे शहरों के स्टार्टअप में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समता समरसता का एक असाधारण संगम है।
कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, उसी प्रकार गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदियों के तट पर पुष्करम का आयोजन होता है। श्री मोदी ने कहा कि कुंभ में युवाओं की व्यापक भागीदारी हो रही है और जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व से जुड़ जाती है तो उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ में बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीक का उपयोग हो रहा है और कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। और अब खबरें महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान लोगों ने आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। ये कार्यक्रम लाउडस्पीकर से प्रसारित किया गया। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ 2025 के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। उन्होंने कहा था कि यह आयोजन समानता और सद्भावना का अद्भुत संगम है। एक रिपोर्ट।
आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने मन की बात सुनने के बाद अपने विचार साझा किए।
मैं यहाँ स्नान करने आई थी, इसमें मैंने प्रधानमंत्री की मन की बात सुना, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। इसमें उन्होंने ये बताया कि महाकुंभ जो है वो एकता का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री जी के मन का बात सुनने को मिला, काफी अच्छा लगा और वास्तविक जो है महाकुंभ एकता का संदेश देता है।
महाकुंभ नगर में श्रद्धालु और तीर्थयात्री पब्लिक एड्रेस सिस्टम से आकाशवाणी के कुंभवाणी समाचार बुलेटिन भी सुन रहे हैं। यह चैनल 26 फरवरी तक समाचार और अन्य कार्यक्रम प्रसारित करता रहेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, कुंभ नगर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन कल से पटना में शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने बताया कि उद्घाटन समारोह विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा, जबकि पूर्ण सत्र विधानसभा के भीतर होगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर से लगभग 300 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे।
ये कुल मिलाकर के लगभग 300 के आसपास प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। अलग अलग स्तर के, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी तो आएंगे ही आएंगे, साथ साथ उनके और पदाधिकारी भी आते हैं। कुल मिलाकर लगभग 300 की संख्या ही होगी।
बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समापन समारोह को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान। श्री यादव ने कहा कि समारोह में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया जाएगा।
संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको लागू करने में विधानसभा संसद की भूमिका, इस विषय पर लोगों के विचार आएंगे, लोग चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, ये मुख्य रूप से विषय है। लोगों ने बनाया है बिहार के हेरिटेज और बिहार के विकास की गाथा, दोनों को समाहित किया है। सारे प्रतिनिधियों को हम दिखाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी हम बिहार के विभिन्न पहलुओं की चर्चा दिखाएंगे।
इधर विधानमंडलों के सचिवों की 61वीं बैठक अब से थोड़ी देर पहले पटना में शुरू हो गई है। कटिहार जिले के अहमदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गदाई दियारा इलाके में मजदूरों को ले जा रही एक नाव अनियंत्रित होकर गंगा नदी में पलट गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की डूबकर मौत हो गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि नाव पर 16 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोग स्वयं तैरकर नदी से बाहर निकल आए, जबकि 4 अन्य लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि 5 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि लापता लोगों की खोज के लिए SDRF के जवानों को लगाया गया है।
3 बॉडी हम लोग रिकवर किए सुबह में ही, जो करीब 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से उनको बाहर निकाला गया है। उनसे पूछताछ में ये जानकारी मिली कि 7 लोग और लापता हैं, उनकी खोजबीन हम लोग कर रहे हैं। SDRF की टीम कलवा से यहाँ पे आ चुकी है और वो नदी में सर्च कर रही है, लोकल लोग भी इसमें सर्च कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नौ दुर्घटना में मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को लापता लोगों की तलाश के लिए प्रभावी खोजबीन अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि देने के भी निर्देश दिए। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने और दिनभर खिली धूप के कारण राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके कारण आज लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।
राज्य के हिमालय तराई वाले जिलों के एक या दो स्थानों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की पूर्वानुमान है, जबकि राज्य के शेष भागों के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 48 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड में कमी के मद्देनजर पटना जिले में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में पठन पाठन का कार्य कल से शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस संबंध में आज एक आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने ठंड की स्थिति में सुधार को देखते हुए स्कूलों को खोलने के आदेश दिए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि अपराह्न 3:30 बजे के बाद सभी कक्षाओं के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के संचालन पर रोक रहेगी। इधर पश्चिम चंपारण जिले में जिलाधिकारी ने ठंड में बढ़ोतरी को देखते हुए कल से 22 जनवरी तक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को बंद करने के आदेश दिए हैं। सुपौल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का नवनिर्मित क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र RRC आज से कार्य करने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र के बन जाने से बाढ़ और अन्य आपदाओं के समय लोगों को त्वरित सहायता मिल सकेगी और जानमाल के नुकसान के जोखिम को भी कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बहादुरपुर क्षेत्र में पूर्व मंत्री और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में भी भाग लिया। इधर राजपूताना राज्य संघर्ष समिति की ओर से महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना के गर्दनी बाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में आज 3रे लद्दाख जैमन मुनलम चेम्मो विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इसके तहत ज्ञान स्थली पर लद्दाख की प्रमुख नदियों और सरोवरों के पवित्र जल तथा फूलों से अभिषेक किया गया। पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार रोहतास जिले में बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े 5 स्थलों को चिन्हित कर विकसित कर रही है। श्री चौरसिया ने सासाराम में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। बिहार के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने नवादा जिले के ऐतिहासिक अपसड़ दरियापुर पार्वती शिक्षा केंद्र पर आधारित एक विशेष डाक कवर जारी किया। इस अवसर पर वारिसलीगंज की विधायक अरुणा देवी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पटना जिला के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत रूपसपुर में पुलिस ने ATM से छेड़छाड़ कर लोगों के पैसे चुराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ASP भानु प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई उपलब्धियों के लिए देश के वैज्ञानिकों की सराहना की। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का 85वां सम्मेलन कल से पटना में शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। कटिहार में गंगा नदी में नौका दुर्घटना में 3 लोगों की डूबने से मौत, 7 लोग लापता। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में ठंड से राहत मिलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।